ये आकाशवाणी है, अब आप मुकेश कुमार से समाचार सुनिए। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक प्रमुख कारोबारी समूह पर रिश्वत के कथित आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही 11:30 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस, वामपंथी दलों, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सरकार ने कहा है कि रेलगाड़ियों में अनारक्षित डिब्बों को समाप्त करने की कोई योजना नहीं है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में बताया कि चालू वित्त वर्ष में LHB कोच के साथ संचालित मेल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में 600 से अधिक अनारक्षित डिब्बे जोड़े जाएंगे। बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे की गैर वातानुकूलित सामान्य श्रेणी और शयनयान सहित 10,000 डिब्बों के निर्माण की योजना है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि देश में करीब 59,000 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण है। लोकसभा में उन्होंने बताया कि वक्फ अधिनियम की धाराओं के अनुसार राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को वक्फ संपत्तियों पर अनधिकृत कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार है। श्री रिजिजू ने कहा कि अधिनियम में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से विकसित भारत प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का आग्रह किया है, जिससे वे ऐतिहासिक विकसित भारत युवा नेता संवाद का हिस्सा बन सकें। विकसित भारत प्रश्नोत्तरी 4 चरणों वाली प्रतियोगिता है। इसमें युवाओं को भाग लेने और अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसकी शुरुआत 25 नवंबर से हुई है और ये 5 दिसंबर तक चलेगी। ये प्रतियोगिता 15 से 29 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तियों के लिए खुली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा, इसके जरिए वे विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी भी बड़े आतंकी हमले का मुकाबला करने के लिए जम्मू शहर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का एक स्थायी केंद्र बनाया है। ये केंद्र जम्मू क्षेत्र के विभिन्न जिलों में सुरक्षा बलों पर आतंकी हमलों के बाद बनाया गया। NSG कमांडो की तैनाती जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जम्मू कश्मीर के लिए तैयार की गई आतंकरोधी योजना का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने आज पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में दविंदर बम्बीहा गिरोह के कई ठिकानों पर तलाशी ली। तलाशी के दौरान मोबाइल और डिजिटल उपकरण, बैंकिंग लेनदेन तथा संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों सहित आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। ये तलाशी देश भर में हथियारों की तस्करी में लगे आतंकी संगठनों पर लगातार कार्रवाई का एक हिस्सा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु की 4 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज कोयम्बटूर पहुंची। राष्ट्रपति कल वेलिंगटन ऊटी में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। शुक्रवार को वे नीलगिरी में जनजाति समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने आज टोक्यो में जापान के उप विदेश मंत्री मासाताका ओकानो के साथ भारत जापान वार्ता के पहले दौर की सह अध्यक्षता की। इस वार्ता में दोनों सरकारों के हितधारक मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों ने भाग लिया। बैठक में संबंधित आर्थिक सुरक्षा नीतियों पर विचारों का आदान प्रदान करने, औद्योगिक और तकनीकी लचीलापन बनाने के लिए साझेदारी को मजबूत करने और प्रमुख प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और अनुप्रयोगों में सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। सिंगापुर में विश्व शतरंज चैंपियनशिप में ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने तीसरी बाजी में विश्व चैंपियन चीन के डिंग लिरेन को हरा दिया। सफेद मोहरों से खेलते हुए गुकेश ने 37 चालों में जीत हासिल की। दोनों खिलाड़ी 1.5 अंक लेकर बराबरी पर हैं। इधर लखनऊ में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पहले दौर में लक्ष्य सेन ने मलेशिया की सोहेल आदिल को और पीवी सिंधु ने अनमोल खरब को हराया। मालविका बंसोड, अनुपमा उपाध्याय, उन्नति हुड्डा, देविका सिहाग, ईरा शर्मा, किरण जॉर्ज और आयुष शेट्टी ने भी सिंगल्स के अंतिम 16 में जगह बना ली है। मस्कट में जूनियर हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट में भारत और थाईलैंड का मैच जारी है। हाफ टाइम तक भारत 8-0 से आगे था। 4 बार की चैंपियन भारतीय टीम का कल जापान से मुकाबला होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।